आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, यह वक्त मुश्किलों से भरा है। कोरोना की इस दूसरी लहर से देश का बुरा हाल है। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कड़े फैसले ले रही हैं। ऐसे वक्त में हम सबका भी नैतिक और सामाजिक दायित्व तो है कि हम कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में करें। अपनी आस्था, पर्व त्यौहार का सम्मान तो करें ही, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों पर भी टिके रहें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, गैर जरूरी वजहों से घर से बाहर न निकलें, मास्क जरूर लगाएं। आइए जानते हैं देश का हाल। भारत में कोरोना की दूसरी लहर पहले के आउटब्रेक से कहीं ज्यादा घातक साबित हो रही है। देश में 5 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां मंगलवार को एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मामलों में बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को रिकॉर्ड 18,000 मामले सामने आए। राज्य के आधिकारिक आंकड़ों में कोरोना से 85 मौतें बताई गई हैं। गुजरात में 6,690 मामले सामने आए। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना से कुल 67 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में मंगलवार को एक बार फिर 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने कल रात से 15 दिनों के कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को 8,998 मामले सामने आए हैं। यहाँ बीते 24 घंटे में कुल 40 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 13,500 कोरोना के केस मिले हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसे कोरोना की चौथी लहर बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 4,817 मामले सामने आए। राजधानी कोलकाता में एक दिन में 1,271 मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को रिकॉर्ड 15,121 नए मरीज मिले। झारखंड में मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 2,844 केस मिले हैं, जबकि इस दौरान 29 मरीजों की मौत हुई है। इनके अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना से स्थिति विस्फोटक हो गई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चिंताजनक रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सभी राज्यों के राज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। उपराज्यपाल वेंकैया नायडू भी इस बैठक में शामिल होंगे। सभी राज्यों के गवर्नर के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले 8 अप्रैल को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। तब पीएम ने सभी राज्यों के गवर्नर को भी कोरोना के खिलाफ मुहिम में शामिल होने की बात कही थी। पीएम ने कहा था कि मुख्यमंत्रियों पर कोरोना के बढ़ते मामलों का दबाव है, इसलिए राज्यपालों को भी कोरोना के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों में शामिल होना चाहिए। राजधानी भोपाल में कोरोना से होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़े सरकार की नीयत की चुगली कर रहे हैं। पिछले 5 दिन यानी 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भोपाल में कोरोना से कुल 11 मौतें हुई हैं। लेकिन शहर के मुख्य विश्राम घाट और कब्रिस्तान के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 5 दिनों में 266 शवों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8, 9 और 10 अप्रैल को कोरोना से एक एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 11 अप्रैल को 3 और 12 अप्रैल को 5 मौतें हुई हैं। इन 5 दिनों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल 11 मरीजों की कोरोना से मौत हुई, जबकि शहर के मुख्य विश्राम घाट भदभदा और सुभाष विश्राम घाट से मिले आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 दिनों में यहाँ कुल 426 शव दाह संस्कार के लिए लाए गए। इनमें से 266 शवों का दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। भारत के DCGI यानी औषधि महानियंत्रक ने कुछ शर्तों के साथ रूस के COVID-19 रोधी टीके स्पुतनिक वी को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में कोरोना रोधी तीसरे टीके का रास्ता साफ हो गया। भारत के औषधि महानियंत्रक की इस मंजूरी के पहले CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने सोमवार को ही कुछ नियामकीय शर्तों के साथ स्पुतनिक वी के सीमित आपात इस्तेमाल की सिफारिश की थी। औषधि महानियंत्रक की ओर से स्पुतनिक वी को हरी झंडी मिलने के बाद रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने कहा कि भारत में हर साल स्पुतनिक वी वैक्सीन की 85 करोड़ से अधिक खुराक तैयार होगी। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में आपत्तिजनक और हिंसक बयानबाजी लगातार जारी है। चुनाव आयोग ऐसे मामलों पर लगातार संज्ञान ले रहा है। अब आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने की रोक लगाई है। राहुल सिन्हा पर सशस्त्र बलों के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी चेतावनी दी है और दिलीप घोष को नोटिस जारी किया है। शुभेंदु अधिकारी पर 29 मार्च को आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है। उन्होंने इस संबंध में 9 अप्रैल को चुनाव आयोग को जवाब भेजा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर सोमवार को 24 घंटे की रोक लगा दी थी। हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ में बुधवार यानी आज तीसरा शाही स्नान होगा। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संत इस स्नान में हिस्सा लेंगे। ये स्नान सुबह 10:15 पर शुरू होगा और शाम 5:30 तक चलेगा। खास बात यह रहेगी कि इस स्नान के लिए साधु संत मेला प्रशासन ने 20 बिंदुओं की गाइडलाइंस जारी की है और उनका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। आयोजन के चलते बुधवार को देहरादून हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रहेगी। शंकराचार्य चौक से चंडी घाट चौराहा और हर की पैड़ी घाट पर आम गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं साधु संतों के शाही स्नान करने तक हर की पैड़ी पर बना ब्रह्म कुंड आम लोगों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान आम श्रद्धालु आसपास के घाटों पर स्नान कर सकते हैं। मनाली लेह सड़क मार्ग 7वें दिन भी आवाजाही के लिए नहीं खुल पाया है। लेह जाने वाले करीब 400 लोग लाहौल के गैमूर, जिस्पा, केलांग, दारचा समेत घाटी के अलग अलग इलाकों में फंसे हैं। आपको बता दें कि बीते 5 अप्रैल को हुई अचानक बर्फबारी के बाद मनाली से लेह जाने वाला रास्ता बंद है। यहाँ आवागमन ठप होने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। फंसे लोगों को घाटी के विभिन्न इलाकों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। सीमा सड़क संगठन लगातार सड़क मार्ग खोलने में जुटा है, लेकिन खराब मौसम के चलते सड़क मार्ग बहाल करने में दिक्कतें आ रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई भागों में अगले 5 दिनों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 14 से 16 अप्रैल के दौरान तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से और तटीय इलाकों, केरल, माहे और कर्नाटक के तटीय व दक्षिणी सुदूर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों और ओडिशा में अगले 4-5 दिनों के दौरान बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि झारखंड में अगले 24 घंटे के भीतर आंधी और बिजली चमकने के साथ ही छिटपुट बारिश की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिनों में बीकानेर व जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में दोपहर बाद से शाम तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। ये खबरें आप News18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।